Hare Krishna, Srimad Bhagavad Gita, Chapter 15, Text Number 19. Hriday ki samast malinata, chanchalta aur buddhi ki samast sochon ko tyag kar pure hriday aur bhav ke saath mangalacharan karenge taki hum jo adhyayan karne wale hain uska pura pura labh prapt ho sake jo ki hai Krishna prem ki prapti. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय. ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाख्या चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा महं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवाश्च श्रीरूपं सागजातं सहगणरघुनाथं पितं तं सजीवम् सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च. हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपीश गोपीका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते. तप्त कांचनम गारंगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सूति देवी प्रणमामि हरि प्रिये. वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधरं शिवासदि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. श्रीमद् भगवद गीता मात की जय हो. पहले श्लोक नंबर 16 में भगवान श्री कृष्ण ने बताया द्वाविमौ पुरुषो लोको क्षर चाशर एवच क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो क्षर उच्यते. यानी कि दो प्रकार के जीव होते हैं, एक क्षर है और अक्षर है. क्षर इस संसार में भौतिक जगत में जितने भी जीव होते हैं वो क्षर होते हैं और आध्यात्मिक जगत में अक्षर होते हैं. उनमें कोई चेंजिंग नहीं आती, कभी गलतियां नहीं करते. और भगवान ने साफ बताया कि जो भी जीव यहाँ संसार में आदि ब्रह्मा से लेकर चींटी तक भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आता है वो क्षर होता है. अतएव ये सब क्षर और अच्युत होते हैं, अतः आध्यात्मिक जगत में मुक्त होते हैं, इसलिए उनको अक्षर कहा जाता है. ये दो चीजें हमने श्लोक नंबर 16 में सीखी. फिर 17 में भगवान श्री कृष्ण ने एक क्लियर बात बताई. उत्तम पुरुषस्त्वन्य इनसे, इन दोनों से, किनसे, क्षर और अक्षर से उत्तम है परमात्मे त्यो उदारता, और उसे परमात्मा कहा जाता है. यो लोक त्रयमाविश्य, और तीनों लोकों में आविश्य हो जाता है, स्थित होता है. विवृत्य व्यय ईश्वर, और तीनों लोकों में प्रवेश करके उन सबका पालन करता है, इसलिए ईश्वर कहलाता है. उसके बाद श्लोक नंबर 18 में भगवान श्री कृष्ण ने बताया यस्मात् क्षरमति तोहम क्षरादपि चोत्तम उत्तमोस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तम। अब क्योंकि मैं क्षर और अक्षर दोनों से परे हूँ इसलिए सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में जाना जाता हूँ, विख्यात हूँ। क्यों विख्यात हैं? क्योंकि क्षर और अक्षर दोनों से परे हैं, दोनों से सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए पुरुषोत्तम माने जाते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण ने बोला, मैंने तो सब कुछ बता दिया है कि क्षर क्या है, अक्षर क्या है और परम पुरुष पुरुषोत्तम कौन है। अब यहाँ पर श्लोक नंबर 19 में भगवान श्री कृष्ण हमें कहते हैं, यो मामेव स्वमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारत। अब भगवान ने जैसे पहले बता दिया है हमें, यस्मात् क्षरमति तो हम अक्षरादपि चोत्तम, मैं क्षर से भी अतीत हूँ और अक्षर से भी उत्तम हूँ। तो भगवान अब यहाँ पर बता रहे हैं, यो मामेवम असमूढ़ो, यानी यो मतलब जो, माम मतलब मुझको, एव मतलब इस प्रकार, किस प्रकार कि मैं क्षर और अक्षर दोनों से उत्तम हूँ। इस प्रकार असमूढ़ का मतलब होता है संशय रह, देखो मूढ़ का मतलब होता है संशय रखना और असमूढ़ का मतलब इसमें जिसको किसको एक टाइप का डाउट नहीं है, किसमें कि मैं क्षर और अक्षर दोनों से परे हूँ, दोनों से उत्तम हूँ, यहाँ के जीव और जो ऊपर के जीव हैं जो मुक्त हो गए हैं उन सबसे उत्तम मैं हूँ। जानाति पुरुषोत्तम, जानाति मतलब वो मुझे जानता है, पुरुषोत्तम मतलब भगवान, पुरुष का मतलब होता है जीव मतलब भोक्ता और उत्तम का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ भोक्ता, यानी जो मुझे कोई भी भगवान मानने में जिसको कोई डाउट नहीं होता है, कोई संशय नहीं होता है। यो माम एवं असमूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमा, जो बिल्कुल संशय रहित होकर मुझे जान लेता है कि मैं पुरुषोत्तम हूँ, सर्वविद भजति माम, फिर उसे क्या करना चाहिए। अब कोई देखो यहाँ पर कुछ लोग जान लेते हैं कि भगवान कृष्ण है, बस इतना जानना काफी है क्या? तो यहाँ पर भगवान कहते हैं जानना काफी नहीं है, सर्वविद भजति माम, फिर उसे क्या करना चाहिए। वह सर्वविद यानी सब कुछ जानने वाला, जिसे सब कुछ पता चल जाता है, उसे डेफिनेटली क्या करना चाहिए, भजति माम, भक्ति करनी चाहिए, माम मेरी भक्ति करनी चाहिए, मेरा भजन करना चाहिए। सर्वभावेन भारत, सर्वभावेन का मतलब होता है सभी प्रकार से, भारत हे भरत पुत्र, भगवान श्री कृष्ण आज अर्जुन को बोल रहे हैं कि देखो अर्जुन, जिसको ये खबर पड़ जाती है, जिसको ये पता चल जाता है कि मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, क्षर हो चाहे अक्षर हो, सबसे ज्यादा सबका पैदा करने वाला मैं हूँ, सबको पालने वाला मैं हूँ, सबकी रक्षा करने वाला मैं हूँ, जब मैं ही सब कुछ हूँ, जिसको ये चीज पता चल जाती है तो बस पता चल जाए तो बैठ जाए आराम से घर पे, नहीं, सर्वविद भजति माम, उसे मेरी भक्ति करनी चाहिए, मेरा भजन करना चाहिए, सर्वभावेन भारत, और इसी प्रकार हे भरत पुत्र। तो यहाँ पर एक प्रश्न तो उठता ही है कि फिर भक्ति कैसे करनी चाहिए भगवान की, अगर भगवान कहते हैं आपको पता चल जाए, जैसे हम सबको पता चल गया कि भगवान श्री कृष्ण के अब हम ज्ञान योग में आ गए हैं और हमने हर तरह से कृष्ण ने अपनी परीक्षाएं मतलब प्रूफ किया है, 10वें अध्याय में विभूति योग, 11वें अध्याय में विश्व रूप, 12वें अध्याय में भक्ति योग और उसके बाद ज्ञान योग में, तो कृष्ण ने हद कर दी, भगवान ने हर चीज पर अपना कंट्रोल स्थापित करके बता दिया कि देखो ये तुम्हारी पृथ्वी है, कंटिन्यूस सूर्य के गिर्द घूम रही है, इसको घूम तो रही है ये, लेकिन ये सूर्य देव से अगर टक्कर लग जाती इससे तो ये जलकर भस्म हो जाती, लेकिन मैं क्योंकि जिस तरह मुट्ठी में तुम धूल को समेट लेते हो गिर नहीं पाती, इसी तरह से मैं भी समस्त ग्रहों को अपनी मुट्ठी में, मेरी मुट्ठी बहुत बड़ी है और उसमें समेटे हुए उसके साथ खेल रहा हूँ, लेकिन किसी को टक्कर लगाने नहीं दे रहा हूँ। तो हर चीज भगवान ने क्लियर कर दी है कि मैं ही पुरुषोत्तम हूँ, मैं तुम्हें जीवन देता हूँ, खाने के लिए सब्जियां और फ्रूट उसमें टेस्ट डालता हूँ, जड़ी बूटियों में टेस्ट डालता हूँ, खाने के लिए पदार्थ प्रदान करता हूँ और पेट में वैश्वान और अग्नि के रूप में उसे पचाता भी हूँ। मैं सब कुछ करता हूँ, इसीलिए मैं पुरुषोत्तम हूँ। तो जिसको ये पता चल जाता है, यो मामेव सम्मूढ़ जानाति पुरुषोत्तम, जो मुझे बगैर किसी डाउट के पुरुषोत्तम जानता है, सर्वविद भजति माम, उसे हर तरीके से हर लिहाज से मेरी भक्ति करनी चाहिए। तो भक्ति शास्त्रों में भक्ति 9 प्रकार की बताई गई है, श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यम आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति है, इसमें से कोई भी चुना जा सकता है। लेकिन इस कलयुग में, क्योंकि भगवान के साथ हमारा जब तक स्टार्ट श्रवण से होता है, देखो यहाँ पर ये नहीं लिखा स्मरणम श्रवणम कीर्तनम, ऐसे नहीं लिखा। कुछ लोग बोलते हैं बस याद तो करते हैं ना, हृदय में तो भगवान है हमारे, में उसे याद कर लेता हूँ। लेकिन यहाँ पर ये नहीं कहा गया, कहा गया श्रवणम, सबसे पहले आपको श्रवण करना है, उसके बाद आपको कीर्तन करना है, फिर कीर्तन के जरिए आपको स्मरण करना है भगवान का, उसके बाद ये विधि जो है वो यहाँ से ही स्टार्ट होती है। वैसे भक्तों, ये जो भक्ति है ना, उसके 64 अंग हैं, 64 उसके ना टाइप्स के अंग होते हैं। और श्री रूप गोस्वामी ने अपनी किताब भक्ति रसामृत सिंधु में उसको बहुत अच्छे तरीके से वर्णन किया है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं उन 64 अंगों में मुख्य 5 अंग हैं, जो अगर आप 5 अंग भी करते हो भक्ति के, तो समझो आप भगवान, वो 64 अंग का पूरा पूरा लाभ आपको प्राप्त होता है। सबसे पहला है साधु संग। यदि हम साधु संग करेंगे ना, तो फिर भक्ति खुद ब खुद होती रहेगी, क्योंकि श्रवण भी होगा, कीर्तन भी होगा, स्मरण भी होगा, सेवन भी होगा। साधु संग जो है वो भक्ति की नींव है, साधु संग। उसके बाद नाम कीर्तन, भगवान के नाम का जप करना। जब साधु संग करके श्रद्धा तथा साधु संग तब भजन क्रिया, फिर उनके साथ तो आपको बैठ के, ऐसा नहीं साधु ऐसा हो जो सिर्फ अपनी ही बताता रहे कि मैंने ये किया मैंने ये किया, ऐसा नहीं। जो आपको ये बताए कि आपके जीवन का लक्ष्य कृष्ण की सेवा करना है और नाम संकीर्तन करना है, तो पहला है साधु संग, दूसरा है भजन क्रिया, भगवान के नाम का कीर्तन करना, तीसरा है भागवत श्रवण। ये भागवत श्रवण जो है वो एक ऐसी विधि है जिससे आप भगवान से प्रेम कर सकते हो। भगवत गीता से क्या है, हम अपने को और भगवान को समझ सकते हैं, लेकिन हमारे जीवन का लक्ष्य जो है वो कृष्ण से प्रेम करना है, तो वो भागवत श्रवण से ही पूरा होता है। इवन भागवत, ऐसा कहा गया कि इस संसार में और कोई भी ग्रंथ ऐसा है नहीं जो कृष्ण से प्रेम आपको करना सिखा, क्योंकि आप प्रेम तभी करते हो जब उसके कार्यकलाप होने, उसने किस किस पर कैसे कृपा की, वो किस उसने क्या क्या लीलाएं की, ये सब अगर हम लोग पढ़ते हैं विषय में कृष्ण के, तो खुद ब खुद ऐसा कहा गया सद्यो रिद्य वरुद्यते तकृति भी शुश्रूषु, यानी कि खाली भागवत सुनना, भागवत को समझना वो बहुत दूर की बात है, लेकिन यदि किसी के हृदय में भागवत श्रवण करने की इच्छा भी उत्पन्न हो जाती है ना, मैं आपको पता है क्यों बता रही हूँ, अभी तो हम लोग भगवत गीता पढ़ रहे हैं ना, लेकिन इसलिए बता रही हूँ कि एटलीस्ट आपके हृदय में इच्छा उत्पन्न हो जाए। तो यहाँ पर बताया शुश्रूषु 20 तत्क्षण, 1 सेकंड में यदि आपके हृदय में भागवत सुनने की इच्छा होती है, तो तत्क्षणात, विदाउट टाइम, कोई भी जरा भी लेट नहीं होगा, फौरन उसी समय आपके हृदय में कृष्ण के लिए प्रेम छलछला उठेगा। सिर्फ आपके हृदय में भागवत सुनने की खाली इच्छा उत्पन्न होती है ना, तो कृपया अपने हृदय में इच्छा बनाए रखना कि हमको कभी किसी भगवान, किसी भी तरह से किसी शुद्ध भक्त का की संगति मिल जाए और हमें भागवत श्रवण करने का मौका मिले और इसी से हमें कृष्ण प्रेम। तो हम बात कर रहे थे, चैतन्य महाप्रभु ने 5 अंग भक्ति मुख्य बताए, एक तो साधु संग, फिर भजन भगवान के नाम का कीर्तन करना, तीसरा भागवत श्रवण करना, चौथा विग्रह सेवा, जैसे हम भगवान के विग्रह की सेवा करते हैं ना, भगवान को प्रसाद अर्पण करना, उनको ड्रेसिंग करना, आरती करना, और 5वां अंग है मथुरावास या जो भी ये धाम वास करना, किसी भी जगह पर जैसे जहाँ पर भगवान ने लीलाएं की हैं ऐसी जगहों पर जाना और वहां पर साधु संग करना। तो ये जो है इनसे क्या होता है, ये कंप्लीट हो जाता है भक्ति, जो 64 अंग है ना वो सारे के सारे कंप्लीट हो जाते हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने तो यहाँ तक कह दिया कि इनमें से ये जो इतने सारे मैंने आपको बताया ना पांच, उनमें से यदि यही पंचेर अंग में से यदि कोई एक को भी अच्छे तरीके से करता है, जैसे साधु संघ उसने अच्छा किया तो बाकी पांचों खुद ब खुद हो रहे हैं, उसके खुद ब खुद हो जाएंगे। साधु लोग तो है ना धाम में भी जाएंगे, वो आपको विग्रह सेवा भी करवाएंगे, वो आपको कीर्तन भी करवाएंगे, वो आपको भागवतम भी श्रवण कराएंगे। और अगर आप भागवतम श्रवण कर रहे हो तो जाहिर सी बात है किसी शुद्ध भक्त से कर रहे हो तो साथ में साधु संघ तो हो ही रहा है, और भागवत श्रवण के साथ साथ आपका कीर्तन तो हो ही रहा है, और भागवत श्रवण के साथ साथ भगवान का स्मरण तो हो ही रहा है। और जहां पर भागवत श्रवण हो रहा है वहीं पर धाम भी बन जाता है, क्योंकि भगवान वहीं पर वास करते हैं जहां पर भगवान की कथा होती है। उसी तरह से अगर आप खाली कीर्तन करते हो, कंटिन्यूअस भगवान के नाम का कीर्तन कर रहे हो, तो बाकी सारी चीजें भी हो रही। लेकिन श्रवण करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब हम श्रवण करेंगे तो ये सारी चीजों में हमारे रुचि उत्पन्न होगी। तो मेन जो है इस कलयुग में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप श्रवण करो किसी शुद्ध भक्त से। अगर आपको श्रवण करने का मौका मिल जाता है तो समझो बहुत बड़ी कृपा हो रही है कृष्ण की, ताकि कृष्ण श्रवण करने से ही कृष्ण ये जो कहा हर चीज देखो अंदर डालने की एक अलग अलग जगह होती है। माउथ खाना हम माउथ से अंदर डालते हैं, दृश्य कोई रूप होता है ना वो हम आंखों से अंदर डालते हैं, लेकिन भगवान के अंदर हृदय में जाने का एक तरीका है कानों के जरिए। भगवान आंखों से दिख कर हृदय में नहीं जाते हैं, कानों से श्रवण श्रुत गृहीतया भक्त्या श्रुत गृहीतया भागवतम में आता है कि भक्ति जो है वो सुनकर ग्रहण की जाती है। ऐसे नहीं है भक्ति गुरु कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको कोई ऐसा मंत्र दे देगा कि भाई हाँ ये आप ये सुबह को कोई टेबलेट लिख कर दे रहे, एक गोली सुबह को खाओ एक गोली शाम को खाओ, आपके हृदय में भक्ति उत्पन्न हो जाएगी। भक्ति उत्पन्न करने के लिए आपको श्रवण करना पड़ता है। यदि आप भगवान के नाम का किसी शुद्ध भक्त से श्रवण करते हो तो स्वतः आपके हृदय में भगवान की भक्ति उत्पन्न हो जाती है। और इसी भक्ति के विषय में यहाँ पर कहते हैं सर्वविद भजति माम, भगवान कहते हैं कि जिसे पता चल जाए कि मैं ही पुरुषोत्तम हूँ वो तो बेवकूफ नहीं है। अब उसे अक्ल आ गई है, उसे पता चल रहा है, तो उसे अपना कार्य करना चाहिए और मेरी ही भक्ति करनी चाहिए। अर्थात जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है वह सब कुछ जानने वाला है, उसे सब कुछ पता चल गया, अब वो अज्ञानी नहीं रहा। यहाँ पर हमें ज्ञान के विषय में बताते हैं भगवान कि देखो पहले ही भगवान ने कहा सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम अपोहनतम वेदेषु सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद वेदे, सब कुछ वेदों का ज्ञाता भी मैं हूँ, वेदों का बनाने वाला भी मैं हूँ, वेदों के जरिए जानने वाला भी मैं हूँ और वेदों को जानने वाला भी मैं हूँ। तो जब मुझे कोई जान लेता है संशय रहित होकर पुरुषोत्तम समझ लेता है, मतलब उसने तो सब कुछ जान लिया है। अतएव हे भरत पुत्र वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है, उसे डेफिनेटली मेरी भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि सब कुछ अक्कल आ गई ना, अब दूसरा कार्य वो क्यों करेगा, क्योंकि भक्ति से ही उसको सब कुछ मैं प्राप्त होने वाला हूँ, मुझसे बढ़कर तो कुछ है ही नहीं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद, श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं जीव तथा भगवान की स्वाभाविक स्थिति के विषय में अनेक दार्शनिक ओहापोह के रूप ओहापोह करते हैं, यानी कि ये जो जीव और भगवान है ना, तो अलग अलग लोग अपने अपने मतानुसार अपने अपने फलसफे के हिसाब से अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हिसाब से उसे बताते हैं, लेकिन इस श्लोक में भगवान स्पष्ट बताते हैं कि जो भगवान कृष्ण को परम पुरुष के रूप में जानता है वह सारी वस्तुओं के का ज्ञाता है। अब भगवान ने साफ साफ इस श्लोक में बता दिया, कुछ लोग अलग अलग तरीकों से बताते हैं कि भाई जीव और परमात्मा एक होते हैं वो हो जाते हैं, या फिर भगवान और जीव एक ही होते हैं, या फिर ऐसे बताते हैं कि पुरुषोत्तम कोई और है भगवान कृष्ण के अतिरिक्त कोई, लेकिन यहाँ पर भगवान ने साफ साफ स्पष्ट वर्डों में कहा यो माम एव असमूढ़, जो किसी संशय से रहित होकर सिर्फ और सिर्फ मुझे माम एव मतलब मेरे अतिरिक्त किसी और को नहीं निश्चित रूप से खाली मुझे जानाति पुरुषोत्तम, मुझे अगर पुरुषोत्तम जानता है तो वो क्या है सर्व भाविन, उसको सब कुछ पता चल गया है, वो सर्वविद भजत इमाम, उसे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मेरी भक्ति करनी है। तो श्री प्रभुपाद जी बोलते इस श्लोक में तो भगवान ने स्पष्ट बता दिया है कि जो भगवान श्री कृष्ण को पुरुषोत्तम जानता है वह सारी वस्तुओं का ज्ञाता है, वही जानने वाला है। वास्तव में अक्कल सही वाली उसी के पास है। आप देखो यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जिनका अपना अपना मत है भगवान के विषय में, कोई निराकार को मानता है, कोई परमात्मा को मानता है, कि कोई किसी देवी देवता को मानता है, लेकिन भगवान ने तो यहाँ पर साफ साफ क्लियर स्टेटमेंट दिया है, सर्वविद भजति माम सर्व भावेन भारत। हे भरत पुत्र, उसी के पास सारा अकल है, उसी के पास सारा ज्ञान है, जिसने मुझे जाना थी पुरुषोत्तम, मुझे पुरुषोत्तम जान लिया है, वह सारी वस्तुओं का ज्ञाता है। अपूर्ण ज्ञाता परम सत्य के विषय में केवल चिंतन करता है। अपूर्ण ज्ञाता मतलब जो जिसका ज्ञान पूर्ण नहीं होता है, जो अभी तक सही तरह से भगवान को, जीव को, परमात्मा को कुछ समझ नहीं सका है, वो क्या करता है, सत्य के विषय में केवल चिंतन करता है। वो मानसिक धारणा अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता रहता है। ऐसे मैंने बताया था ना आपको, जो प्रमाण तीन तरह, वो एस्टिमेट लगाता रहता है कि ये भगवान हो सकता है, ये भगवान हो सकता है प्रत्यक्ष, तो उसको भगवान नजर नहीं आता, तो वो अनुमान प्रमाण करता रहता है, अनुमान लगाता रहता है, स्क्यूलेट करता है कि भाई ये भगवान हो सकता है, वो भगवान हो सकता है, वो भगवान हो सकता है। लेकिन यहाँ पर भगवान श्री प्रभुपाद जी को ऐसा कौन करता है, अपूर्ण ज्ञाता, वो जो जिसका ज्ञान अभी तक पूर्ण नहीं होता है, वो केवल चिंतन लगाता रहता है। जबकि पूर्ण ज्ञाता समय का अपव्यय किए बिना सीधे कृष्ण भावनामृत में लगता है, लेकिन अक्कल जिसके पास है, जिसका पूर्ण ज्ञान हो गया है, श्रील प्रभुपाद जी का मत है। श्रील प्रभुपाद जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, भगवान के शक्ति आवेश अवतार है, भगवान के एक शुद्ध भक्त हैं, और हमें ये बता रहे हैं कि जिसका ज्ञान पूर्ण है, जिसको कम्प्लीट अक्कल आ गई है, वो यही है कि वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करे, समय का अपव्यय ना करे, क्योंकि प्रायेण अल्प आयु, शास्त्र कहता है कि आपके पास बहुत ही कम समय है, आपके पास समय इतना कम है कि उसमें यदि आप चिंतन ही करते रहोगे तो भजन कब करोगे। तो जो जिसका जिसके पास अक्कल है वो क्या करेगा, चिंतन करने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा, और सीधे कृष्ण भावनामृत में लगेगा, और सीधे माला उठाएगा, भगवान के नाम का जप करेगा, साधु संग करेगा, कथा श्रवण करेगा, अर्थात भगवान की भक्ति करने लगता है। ये होती है भगवान की भक्ति। संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता में पग पर इस तथ्य पर बल दिया गया है। सारी भगवद गीता में हमें ये पद पद पे बताया गया कि भगवान ही श्री कृष्ण ही पुरुषोत्तम है। भगवान श्री कृष्ण 7.7 में कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिद् अस्ति धनंजय। हे धनंजय, मुझसे बढ़कर कोई सत्य नहीं है, मैं सर्वमिदं पूर्णतम सूत्रे मणिगणा इह। जिस तरह से मोती धागे में पिरोए होते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण सृष्टि मुझ पर आधारित है। 10.9 में कहते हैं, मया दक्षिण प्रकृति ही सूयते सचराचरम हेतु नानेव कौन्तेय जगत विपर। ये जो प्रकृति है ना कौन्तेय, मेरे आंख के इशारे से चलती है, और मैं ही इस सारी प्रकृति को चलाने वाला हूँ। 9.11 में भगवान ने एकदम क्लियर बताया कि अवजानन्ति माम मूढ़ा मानुषीम तनुम आश्रितम परम भावम अजानन्तो मम भूतम महेश्वरम। हालांकि मैं समस्त प्राणियों का महेश्वर हूँ, लेकिन जो बेवकूफ होते हैं, जो जब मैं मनुष्य देह धारण करता हूँ तो उसमें वो क्या करते हैं, वो उसको समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं जब मैं मनुष्य देह में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं और मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जान सकते हैं। 10.8 में भगवान ने कहा, अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते माम बुधा भाव समन्विता। कि मैं समस्त आध्यात्मिक तथा भौतिक जगतों का कारण हूँ, प्रत्येक वस्तु मुझसे ही उद्भूत हुई है। जो बुद्धिमान व्यक्ति या भली भांति जानते हैं, वे मेरी प्रेमा भक्ति में लगते हैं तथा हृदय से पूरी तरह से मेरी पूजा करते हैं। ये बात भगवान ने पग पग पर बताई है कि मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरी ही भक्ति आपको करनी है, और मेरी भक्ति करने से ही आपको सिद्धि प्राप्त होती। और चैप्टर नंबर 13 में भगवान श्री कृष्ण ने हमें परमात्मा, यानी कि जो हृदय में परमात्मा बैठा हुआ है वो, और जीव के विषय में इतने अच्छे तरीके से भगवान ने बताया। पहले 13.13 में बताया, येयम् यत् तत् प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वामृतम् उष्णुते अनादिर्मत्परः ब्रह्म न सत्तन्नासु सदुच्यते। यानी कि मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बताऊं, जिसे जानकर तुम्हें ब्रह्म की अनुभूति होगी, और ये जो एक तो आत्मा होती है जो हृदय में होती है, लेकिन वो क्या होती है, मत परा होती है, आधीन है, वो मेरे आधीन है और मेरे आधीन है इस जगत के कार्यकलापों से स्थिर होती है। लेकिन इसी चीज को 13.14 में भगवान श्री कृष्ण ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि एक दूसरा भी परमात्मा होता है, उसका क्या है, सर्व पाणिपादम तत्सर्वतो अक्षरोमुखम सर्वत्र श्रुति लोकम सर्वामृतम तिष्ठते, यानी कि उसके हाथ पांव सिर मुंह जांघें हर तरफ है, वो परमात्मा है, वो हमारे हृदय में है लेकिन वो अलग है। और इसी चीज को भगवान श्री कृष्ण ने 13.23 में एकदम क्लियर करके बता दिया कि उस परमात्मा का क्या काम है, उपदृष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरम परमात्मेति चाप्युक्तम देहेस्मिन् पुरुषः परः, इस शरीर में एक दूसरा परम पुरुष भी रहता है जो इसका काम क्या है, वो साक्षी है, अनुमति देने वाला है और विद्यमान है हमारे शरीर में और उसका नाम परमात्मा है। तो श्रील प्रभुपाद जी हमें याद करा रहे हैं कि देखो भगवत गीता में पग पग पर इस तथ्य पर बल दिया गया है, फिर भी भगवत गीता के ऐसे अनेक कट्टर भाष्यकार हैं जो परमेश्वर तथा जीव को एक ही समान मानते हैं, मतलब उनके पास अक्कल इतनी नहीं होती है, पूरी भगवत गीता पढ़ लेते हैं और भगवत गीता में बार बार लिखा हुआ है भगवान और जीव के इतने उनमें क्या क्या फर्क है, जीव तो भगवान के आधीन है, ये सब पता है, पता चल जाना चाहिए जिसको भगवत गीता पढ़ता है, थोड़ा तो सिंसियर होना चाहिए, अपने से थोड़ा सिंसियर होना चाहिए, भगवान से सिंसियर होना चाहिए, खाली गीता पढ़ लेना थोड़ी ना काफी है। बोला हाँ, हम लोगों ने अक्सर लोग बोलते हैं मैंने ये वाली भगवत गीता पढ़ी है, मैंने ये वाली वो वाली भगवत गीता नहीं सिखा सकती, जब तक कोई भक्त हमें बताएगा नहीं ना भगवान के विषय में, तब तक हम भगवान को नहीं समझ सकते। आप जिस जो भी भगवत गीता पढ़ रहे हो, अगर वो श्रील प्रभुपाद की भगवत गीता नहीं है तो मैं आपको 100% कह रही हूँ कि वो भगवत गीता जो है वो भक्त ने नहीं लिखी है, वो किसी साइंटिस्ट ने लिखी है, किसी फिलोसोफर ने लिखी है, किसी पॉलिटिकल बंदे ने लिखी है, कोई किसी विज्ञानी ने लिखी है, किसी ज्ञानी ने लिखी है, किसी दार्शनिक ने लिखी है, वो भक्त ने नहीं लिखी है। क्योंकि कोई जब श्रील प्रभुपाद ने जब ये भगवत गीता लिख ली है ना, तो फिर ये इतनी पूर्ण है कि कोई और भक्त इस पर टीका करने के बारे में नहीं सोचता है, इसके ऊपर लिखने के बारे में नहीं सोचता है, बल्कि क्या सोचता है कि मैं कैसे इस भक्त के भाष्य के ऊपर अमल कर सकूं, मैं कैसे इसको अपने जीवन में उतार सकूं। अब उसके ऊपर अब भगवत गीता का ये संपूर्ण जो व्याख्या हमारे हाथ में है, जिसको श्रीमद् भगवत गीता एज इट इज भगवत गीता यथारूप कहा जाता है, इसको पढ़ने के बाद अब श्रीमद् भगवत गीता पर कमेंट्री करने की जरूरत नहीं है, किसी भक्त ने ऐसी जरूरत नहीं की है, क्योंकि ये कंप्लीट है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है, इसमें कोई कुछ डालना नहीं है, कुछ निकालना नहीं है, ये बिल्कुल कंप्लीट है। तो ये श्रीमद् भगवत गीता जो हम भगवत गीता श्रील प्रभुपाद की पढ़ रहे हैं ना, वो बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं बहुत सारे कट्टर भाष्यकार हैं जो अभी तक भगवत गीता कितना अच्छे तरीके से पढ़ लेते हैं लेकिन फिर भी परमेश्वर तथा जीव को एक ही मानते हैं। दुर्भाग्य है ऐसे लोगों का कि शास्त्र को पढ़कर भी वो समझ नहीं पाते हैं। वैदिक ज्ञान श्रुति कहलाता है। अब श्रुति में अक्सर आप लोगों को बोलती हूँ ना, श्रुति स्मृति, तो श्रुति किसको बोलते हैं, वैदिक ज्ञान को, जो भी वैदिक ज्ञान है अगर वो सुनकर, जिसका अर्थ है श्रवण करके सीखना, यानी कि हम सीखते हैं ना, सुनते हैं गुरु महाराज से फिर उसको सीखते हैं, तो उसको श्रुति कहते हैं। वास्तव में वैदिक सूचना कृष्ण तथा उनके प्रतिनिधियों जैसे अधिकारियों से ग्रहण करनी चाहिए। यहाँ पर एक बात क्लियर करके बता रहे हैं कि देखो, अगर आपको वैदिक सूचना या श्रुति या शास्त्र समझना है तो उसका एक ही तरीका है कि या तो आप कृष्ण से सीखो या कृष्ण के प्रतिनिधियों जैसे अधिकारी, यानी कि जो भगवान के लिंक में, जैसे मैंने आपको कल परंपरा गुरु परंपरा के विषय में बताया, तो ऐसे अधिकारियों से ग्रहण करना। लेकिन क्योंकि हम डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण, इतनी हमारे पास अक्कल नहीं है कि भगवान श्री कृष्ण हमें गाइडलाइंस देते हैं हृदय में, लेकिन क्योंकि हमारा हृदय इतना मलिन है कि हम भगवान की आवाज को इतना अच्छे तरीके से ग्रहण नहीं कर सकते हैं, तो इसका एक ही तरीका है कि जो भगवान के भक्त होते हैं, प्रतिनिधि होते हैं, उनसे हमें वैदिक सहायता को ग्रहण करना चाहिए। यहाँ कृष्ण ने हर वस्तु का अंतर सुंदर ढंग से बताया है, अतः इसी स्रोत से सुनना चाहिए। साफ साफ बताया हर चीज भगवान श्री कृष्ण ने बता दी कि क्षर क्या है, अक्षर क्या है, मैं कौन हूँ, संसार क्या है। तो अतएव इसी स्रोत से, यानी कैसे से, जो या तो भगवान के प्रतिनिधि हैं, जो अधिकारी हैं, जिन्होंने तत्व को देखा है, उनसे
सुनना चाहिए। लेकिन यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी बहुत ही सुंदर बात हमारे लिए कह रहे हैं जो वाकई में हम लोगों को करनी चाहिए। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, लेकिन केवल सूकरों की तरह सुनना पर्याप्त नहीं है। सूकर कहते हैं सुअर या कुत्ते जो होते हैं ना, जानवर मतलब, उनकी तरह सुनना। जैसे उनको आप बोलोगे ना, आप उनको कुछ भी बोलो वो सुनेंगे, लेकिन सुनने से क्या फर्क पड़ेगा। आपके घर में अगर कोई कुत्ता है, उसको आप बोलो कि सुनो, माला करो, भक्ति करो, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, भगवान कृष्ण ही भगवान है, भगवान की भक्ति करनी चाहिए, तो क्या होगा, वो करेगा नहीं करेगा। भले कितना ही सोफेस्टिकेटेड कुत्ता हो ना आपके घर में, वो माला नहीं करेगा, वो भक्ति नहीं करेगा। तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, ये तो हम लोग सुन रहे हैं और जानवरों की तरह रिएक्ट कर रहे हैं, भक्ति तो कर ही नहीं रहे हैं। देखो सुनने का मतलब क्या होता है, सुनने का मतलब होता है सुनना और ग्रहण करना। जैसे मैं अभी आपको बोलूं कि किताब खोलो, शास्त्र खोलो, शास्त्र में देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, पेज नंबर ये खोलो। अगर आप खोल नहीं रहे हो, मेरे सामने अगर आप बैठे हो और उसको खोल नहीं रहे हो, तो मैं क्या कहूंगी, सुना नहीं क्या आपने, सुना नहीं मैंने बोला बुक खोलो। तो आप अगर नहीं खोलो, इसका मतलब है नहीं सुना, है ना। उसी तरह से हम रोज भगवद गीता सुन रहे हैं और भगवद गीता में एक ही बात बताई कि हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। और अगर हम भगवान की भक्ति नहीं करते हैं, भगवान के नाम का जप नहीं करते हैं, शास्त्र को सीरियस नहीं लेते हैं, जो लिखा हुआ है उसको फॉलो नहीं करते, पहले सुन के आ जाते हैं कि भाई कृष्ण ही भगवान है, और बाद में बोलते हैं कि भाई हाँ ये भी भगवान है, वो भी भगवान है, ये बाबा भी भगवान है, वो बाबू भी भगवान है, ये देवी देवता भी भगवान है। ये अगर इस तरह की मति रहती है और सुन रहे भगवद गीता है, तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं ये ऐसे ही है जैसे जानवरों को हम बोलते रहे। देखो साफ साफ लिखा हुआ है, मैं अपने शब्द डालना ही नहीं चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ जो खालिस चीज एकदम प्योरिटी जो श्री प्रभुपाद ने हमें दी है वो एज इट इज आप तक पहुंचाई जाए। साफ वर्ड्स है, लेकिन केवल सूकरों की तरह सुनना पर्याप्त नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि अधिकारियों से समझे, उसे समझना है और अपने जीवन में उतारना है। ऐसा नहीं है कि केवल शुष्क चिंतन ही करता है। शुष्क चिंतन का मतलब होता है खाली सोचता ही रहे, हाँ इसने ये कहा है, इस गीता में ये लिखा हुआ है, इस गीता में ये लिखा हुआ है, लेकिन ये भी सही हो सकता है, वो भी सही हो सकता है, बस सारी जिंदगी अपनी इस तरह से सोचने में ही लगाता रहे, शुष्क चिंतन ही करता रहे। मनुष्य को विनीत भाव से श्रीमद् भगवद गीता सुननी चाहिए और सारे जीव सदैव भगवान के अधीन है ये समझना चाहिए कि भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने बता दिया है कि ये पूरी प्रकृति मेरे अधीन है, जो कुछ भी संसार में है वो मेरे अधीन है। जो भी इसे समझ लेता है, श्री प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं, जिसे ये बात समझ में आती है कि भगवान ही पुरुषोत्तम है, सब कुछ पालने वाले हैं, सबकी रक्षा करने वाले हैं, सब केयर करने वाले हैं, जो ये बात समझ लेता है वही कृष्ण के कथना अनुसार वेदों के प्रयोजन को समझ लेता है, अन्य कोई नहीं। उसने सब कुछ, इसीलिए देखो बोलते ना श्रीमद् भगवद गीता वेदों का सार है। जो श्रीमद् भगवद गीता को एक दफा भी शुद्ध भक्त की तरह, जैसे श्री प्रभुपाद जी हमें बताते हैं एज इट इज, इस तरह से हम लोग समझते हैं, तो हमें ये वेदों का, यहाँ पर भगवान ने साफ साफ बता दिया, स सर्वविद ये बताया, यो मामा सम्मूढ़ा जानाति पुरुष स सर्वद्विद भजति मे सर्व भावेन भारत। वो वेदों का सही मकसद जान सकता है जिसने ये जान लिया। तो जो श्रीमद् भगवद गीता, श्री प्रभुपाद की भगवद गीता एक दफा भी पढ़ेगा ना, उसे कम अज कम इस बात पे तो डाउट कभी रहेगा ही नहीं कि कृष्ण के अतिरिक्त कोई भगवान हो सकता है या सृष्टि को चला सकता है। तो वही बात श्री कृष्ण कह रहे हैं कि वेदों के प्रयोजन को वही समझता है, अन्य कोई नहीं। अन्य कोई मतलब दूसरे वाले जितनी भी भगवद गीताएं पढ़ लो आप लोग, भले कोई जो भक्ति की टीका नहीं है, किसी से भी समझ लो, कोई फिलोसोफर हो, कोई इंजीनियर हो, कोई डॉक्टर हो, कितनी अक्कल आपके अंदर आ जाए, वेदों का सार तो ये है कि भगवान ही सर्वश्रेष्ठ है और उनकी भक्ति ही करना ही हमारे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। आगे बताया, भजति शब्द अत्यंत ही सार्थक है। कई स्थानों पर भजति का संबंध भगवान की सेवा के अर्थ में युक्त हुआ है। जैसे हमने भजति यानी भक्ति कैसे करनी चाहिए, तो भगवान की सेवा मैंने आपको बता दिया कि 64 तरीके से होती है, उनमें से 5 मुख्य हैं। यदि कोई व्यक्ति पूर्ण कृष्ण भावना में अमृत में रत है, अर्थात भगवान की भक्ति करता है, तो यह समझना चाहिए कि उसने सारा वैदिक ज्ञान समझ लिया है। वैष्णव परंपरा में यह कहा गया है कि यदि कोई कृष्ण भक्ति में लगा रहता है तो उसे भगवान को जानने के लिए किसी अन्य आध्यात्मिक विधि की आवश्यकता नहीं रहती। यानी कि जो हमने अभी 5 तरीके बताए और जो नवदा भक्ति है, तो ये अगर कोई करता रहता है तो उसको यज्ञ दान तपस्या आदि दूसरी क्रियाएं करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा वैष्णव परंपरा में बताया गया। भगवान की भक्ति करने के कारण वह पहले से ही लक्ष्य तक पहुंच सकता है। भक्ति क्या होती है? सुनना और कीर्तन करना, और ये करने के बाद वो डायरेक्ट से लक्ष्य तक पहुंच जाएगा। लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, और श्रवण और कीर्तन आपको वहां तक पहुंचा देगा। वह ज्ञान की सीमित प्रारंभिक विधियों को पार कर चुका है। जो प्रारंभिक विधियां होती हैं, यज्ञ देना, यज्ञ करना, तपस्या करना, दान देना, और ये सब जो दूसरे दूसरे अनुष्ठान है प्रारंभिक, यानी कि ये स्टार्ट की जो है, जिससे आपके हृदय में श्रवण और कीर्तन के प्रति रुचि उत्पन्न हो जाती है। और जब ये भक्ति आप स्टार्ट कर लेते हो तो समझो उन विधियों को पार कर लिया है। लेकिन यदि कोई लाखों जन्मों तक चिंतन करने पर भी इस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता है कि श्री कृष्ण ही भगवान है और उनकी शरण ग्रहण करना चाहिए, तो उसका अनेक जन्मों का चिंतन व्यर्थ है। यहाँ पर श्री प्रभुपाद ने साफ साफ बता दिया कि आप भले करोड़ों किताबें पढ़ लो, लाखों जन्म ले लो और अलग अलग तरीके से भगवान के विषय में चिंतन करते रहो, खालिस अपने फलसफे झाड़ते रहो और अपनी विद्या, अपने ज्ञान के अभिमान को बताते रहो, लेकिन अगर आप इस नुक्ते पर नहीं पहुंचे हो, इस पॉइंट पर नहीं पहुंचे हो कि कृष्ण ही भगवान है तो उनकी शरण ग्रहण करनी चाहिए, अगर आपको ये बात समझ में नहीं आई है तो आज तक आपने जो कुछ भी सीखा है, जितने भी जन्म में आपने जितनी भी मेहनत की है, यदि आप कृष्णस्तु भगवान स्वयं इस पॉइंट पर नहीं पहुंचे हो तो आपका सारा का सारा श्रम एव ही केवलम, सारा का सारा चिंतन व्यर्थ हो जाता है, बेकार हो जाता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।